15वां अध्याय 15वां श्लोक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा विभाग चल रहा है पंद्रहवें अध्याय का। इस तीसरे विभाग में ज्ञान चक्षु कैसे प्राप्त करना है उसका वर्णन हो रहा है। तो 12वें 13वें ज्यादा श्लोक बताया था किस तरह से भगवान इस सृष्टि के पालन करता है, ब्रह्मांड को चलाते हैं रोशनी देकर, पृथ्वी को धारण करते हैं अपने ऊर्जा शक्ति के द्वारा, और फिर हमारी पाचन क्रिया को चलाते हैं वैश्वानर के रूप में। तो अभी ये भौतिक जगत का अस्तित्व का उद्देश्य क्या है वास्तव में? द पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इज टू पॉइंट बियॉन्ड द वर्ल्ड, मतलब क्या दुनिया का उद्देश्य क्या है कि दुनिया के परे जो धाम है वह हमें दिखा है। तो भगवान इस दुनिया में हमारा पालन करते इसलिए नहीं कि हम सुख से यहां पे रहे, वह है, ऐसे नहीं कि भगवान चाहते कि हम दुखी रहे यहां पे, पर यह जगत अशाश्वत है और इसके परे एक जगत है और वहां पे जाना है। तो वहां जाने के लिए जो मार्ग है वह बताना, उसके लिए मार्गदर्शन करना, यह भगवान का प्रधान कार्य है और वह वे परमात्मा के रूप में करते हैं। तो इसलिए भौतिक दृष्टि से पालन करते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान देने के लिए सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में पास में ही मैं बैठा हूं भगवान कहते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तीन चीजें बताई हैं, स्मृति ज्ञान और अपोहन। इसका क्या संबंध है वास्तव में? भगवान बाहर से गुरु साधु शास्त्र के रूप में ज्ञान देते हैं और फिर हमारी इच्छा के अनुसार, अगर शास्त्र से बताया जाता है कि भगवत भक्ति में असली आनंद है, इंद्र तृप्ति में आनंद नहीं है, तो यह जब सुनते हैं तो उसके बाद में यह ज्ञान हमको भगवान ही दे रहे गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, पर उसके बाद में हमारी जो इच्छा है, अगर हम इच्छा रखते हैं कि मुझे इंद्र तृप्ति ही करनी है, तो फिर भगवान हमारी इच्छा को देख कर हमें उस ज्ञान की अपोहनन कर देते हैं, उसको भुलाते। कभी हम देखते हैं कि जब इंद्रलुप्ति के प्रलोभन आया था तो क्या होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? ऐसे भगवान नहीं भुला रहे हैं, पर क्या होता है, भगवान हमें हमारी इच्छा के अनुसार ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सथई को बचाव में उस तरह से आराम प्रदान करें। हम बोलते सही मार्ग क्या है, मैं तुमको बताऊंगा शास्त्रों से, पर उसके बाद में तुम्हें जो चुनना है वो तुम चुनना पड़ेगा। तो अगर तुम फिर भी इच्छा रखते हो कि इंद्रियुक्ति करनी है, तो फिर इंद्रियुक्ति के अनुकूल मैं ज्ञान दे दूंगा और इंद्रियुक्ति के प्रतिकूल जो ज्ञान है उसकी विस्मृति करा दूंगा। और इसके विपरीत अगर हम भगवत भक्ति की इच्छा करते हैं तो फिर भले ही इंद्रियुक्ति के प्रलोभन भी क्यों ना आ जाए, पर भगवान उस ज्ञान को हमको बराबर भक्ति का ज्ञान दिलाएंगे और फिर वो इंद्रियुक्ति को हम भूल जाएंगे। नमै जनो जात कथं जनाव्रजे मुकुंद सेव्यन्वयदंग संस्मृतिम। तो नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि जो जिसने भगवान की भक्ति की है वह भले ही भवबंधन में माया के प्रलोभन में कहीं फंस जाए, नमै जनो जात कथं जनाव्रजे कथं जनाव्रजे, भले ही वह भवबंधन में फंस जाएगा फिर भी जिस तरह से भौतिकवादी लोग भौतिक जगत में बन जाते हैं, मुकुंद सेव्यन्वयदंग संस्मृतिम, मुकुंद सेव्य, जिसने मुकुंद की सेवा की है वह उस तरह से नहीं पड़ता है माया के बंधन में। क्यों? क्योंकि मुकुंदांग स्वर उपागोहनम पुनर विहातु इच्छे नरस ग्रहो जना। विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं तात्पर्य में कि वह जो रस ऊंचा स्वाद है वो रस का भूत भक्त को लग कर रहा है और वो कभी भूत छोड़ता नहीं है। तो इसीलिए भले ही व्यक्ति इंद्रियुक्ति करने का प्रयास भी क्यों न करे पर उसको इंद्रियुक्ति में कुछ रस नहीं मिलेगा और फिर धीरे धीरे वो भक्ति में लौट के आ जाएगा। तो इस तरह से भगवान स्मृति और विस्मृति देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, और वही भगवान वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारे वेदों में अलग अलग विषय बताए गए हैं, पर उन सब का अंतिम उद्देश्य है कि वो भगवान ही है। और वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदांत कृत, वो ही वेदों के रचयिता है और वे व्यासदेव के रूप में वेदों के रचयिता है। व्यासदेव ये भगवान के अवतार है, कहते हैं लिटरल इनकार्नेशन, कहते वांग्मय के लिए अवतार है। और फिर वेद वेद, और क्योंकि मैंने ही वेद लिखे है तो मैं वेद जानता हूँ, भगवान बता दे, मुझे कोई स्मृति नहीं हुई, सब कुछ स्पष्ट रूप से पता है। तो यहाँ पे अर्जुन को सवाल आता है वेद कि अगर आपको वेद पता है तो कृपया वेदों का क्या सार है मुझे बताइए। तो अभी 16 17 18 जो श्लोक है इनको हमारे आचार्य ने बताया कि ये त्रिश्लोकी गीता है। जैसे चतुर्श्लोकी गीता है, चतुर्श्लोकी गीता कहाँ से कहाँ तक है? 10वें अध्याय का 8वें से 11 श्लोक से। तो यहाँ पे जो है विशेष करके मायावाद के खंडन के लिए, भगवान के भगवत भगवतता के लिए, स्पष्टीकरण के लिए बहुत ही उचित श्लोक है और बहुत ही स्पष्ट श्लोक है। द्वाभिमाः पुरुषः लोके चरश्चाक्षरैव च चरस्सर्वाणि भूतानि कूतस्थो अक्षर उच्यते। दो प्रकार के लोक पुरुष है यहाँ पे। अभी इसका उल्लेख 13वें अध्याय में भगवान ने किया था 22 से 23 श्लोक में, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर और अक्षर। क्षर मतलब जो बंधन में फंसे हुए, अक्षर मतलब जो बंधन से परे है। क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो क्षर है सब जगह पे, मतलब वो बहुत भौतिक अस्तित्व में अलग अलग योनियों में अलग अलग लोकों में ये है। पर कूतस्था अक्षर उच्यते, कूतस्था, कूतस्थ मतलब क्या, जो शिखर पे कोई रहता है उसको कूतस्थ कहते हैं। तो कोई बड़ा महल है और उसके ऊपर कोई मीनार है और शिखर है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कोई पंछी रहता है तो नीचे जमीन पे क्या चल रहा है वो देख सकता है पर उससे कुछ प्रभावित नहीं होता है। तो ठीक है, कूतस्थ मतलब क्या, जो जीवात्मा बंधन से मुक्त है वह भौतिक स्तर पे क्या हो रहा है वो देख सकता है पर उससे प्रलोभित नहीं होता है, कूतस्थ। सो जो कूतस्थ है, जो इस तरह से मुक्त है, वो अक्षर है। तो इस श्लोक में क्या प्रधान रूप से बताया गया कि दो प्रकार के जीव, दो प्रकार के पुरुष हैं। और अभी फिर भगवान बताएगा कि एक तो एक बद्ध है और एक मुक्त है। तो अभी मायावादी लोग कहते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा मुक्त हो जाएगा तो वो ब्रह्म मिलन हो जाएगा, वो सर्वव्यापी हो जाएगा। पर भगवान बताएंगे कि नहीं, जो एक और पुरुष है वो कोई और है। उत्तम पुरुषत्वान्या,
उत्तम पुरुषत्वान्या,
परमात्मेति उदारता,
परमात्मेति उदारता,
यो लोकत्रयमाविश्य,
यो लोकत्रयमाविश्य,
विभर्त्यव्यय ईश्वरा,
विभर्त्यव्यय ईश्वरा।
उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष कोई और है, मतलब क्षर और अक्षर के परे है। जो पुरुषोत्तम है मुक्त आत्मा, ये पुरुषोत्तम नहीं है। भारत में कई बार लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर ले मतलब वो भगवान बन गया, पर नहीं, भगवान कहते हैं जो मुक्त आत्मा जो है अक्षर है उसके भी परे भगवान है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उनको उत्तम पुरुष का नाम क्या है, परमात्मा इति उदारता, यो लोक त्रयमाविश्य, वो तीनों लोकों में प्रवेश किया है उसने। और विभर्त्यव्यय ईश्वर, और इस तरह से ये अव्यय है, काल के प्रभाव के परे है और वह ईश्वर है। अभी भगवान ने इसी अध्याय में बताया है कि किस तरह से वे पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। 13वें श्लोक में कामाविश्य च भूतानि, तो मैंने मैंने प्रवेश किया जिस तरह से आविश्य, और यो लोक वहां पे गामाविश्य च भूतानि है, यहाँ पे क्या है, यो लोकत्रयमाविश्य आविश्य, वही शब्द है दोनों में। मतलब क्या है, वही भगवान जो यहाँ पे माम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, पर स्पष्ट है हम संदर्भ से देखते हैं तो। और फिर भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे कि ये उत्तम पुरुष उसको परमात्मा कहते हैं, और ये उत्तम पुरुष कौन है? अगर कोई गलत फहमी है या कोई स्पष्टीकरण नहीं है करना चाहिए तो स्पष्टीकरण अगले श्लोक में हो जाएगा। यस्मात् शरमति तोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः। तो अभी यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम्, क्षर के मैं परे हूँ, अक्षरादपि चोत्तमः और अक्षर के भी मैं परे हूँ, तो क्षर और अक्षर दोनों के मैं परे हूँ, और अतोऽस्मि लोके वेदे च, और इसीलिए इन सब लोकों में और वेदों में मैं मेरा गुणगान होता है किस नाम से? प्रतिथा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इस नाम से। तो मतलब जो पिछले श्लोक में पुरुषोत्तम के बारे में उल्लेख किया था वो कौन है? वो भगवान ही है। तो अभी चक्रवर्ती पाठ समझाते हैं कि श्लोकों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 16वां श्लोक है वो ब्राह्मण के बारे में वर्णन कर रहा है, 17वां श्लोक परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहा है, और 18वां श्लोक जो है वह भगवान के बारे में वर्णन कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रगतिशील है। सो ब्राह्मण परमात्मा भगवान सर्वगतम, सर्वगतम तो क्या है? अभी ब्राह्मण में अणुब्रह्म है, परम ब्रह्म है, दोनों है, पर दोनों अहम ब्रह्मास्मि सत्य है, तो इसलिए वो गलत नहीं है। पर जो ब्राह्मण है सर्व सर्वगतम और सर्व सर्वम खलमिदम ब्रह्म, बहुत से लोग बातें हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, महावाक्य है वेदांत उपनिषद के, उसमें भी ये आता है कि ब्राह्मण सर्वव्यापी है, तो वो असत्य नहीं है पर वो पूर्ण सत्य भी नहीं है। तो अभी भगवान बोलेंगे, अभी तीन श्लोकों ने बताया है, अभी इनका जो सार है वो अगले श्लोक में फल सार है, जो कि कैसे अगर ये समझ जाएगा तो व्यक्ति की क्या महिमा है जो समझ जाएगा, त्रिश्लोकी भगवदगीता जो है उसको समझ जाएगा तो यो यो मामेवमसम्मूढो जानाति
पुरुषोत्तमः
स सर्वविद् भजति माम्, सर्वभावेन भारत, यो जो इस तरह से असम्मूढ़ बिना किसी मोह के जानाति पुरुषोत्तमः, समझता है कि मैं पुरुषोत्तम, माम पुरुषोत्तम, जैसे समझता है उस व्यक्ति का क्या गुण विशेषता है? स सर्ववेद, ऐसा व्यक्ति सब कुछ जान चुका है, पर ज्ञान के उद्देश्य है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान का सार है, वह समझ गया है स सर्ववेद, और ऐसा पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है? भजति माम, ऐसे नहीं है कि जब सर्वविद बन गया तो व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान हूँ। ये जो है श्रृंखला बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार ज्ञानी होते हैं वो स्वीकार करते हैं कि भक्ति मार्ग अच्छा है, पर वो कहते हैं कि भक्ति के बाद में जब पूर्णता हो जाएगी तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसे कहते हैं चैतन्य पथ शंकर मठ। क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है बंगाल में कहा, चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है बड़ा अच्छा है, नाचो गाओ भक्ति करो, पर क्या है? शंकर आचार्य ने पथ बताया है कि चैतन्य पद शंकर मठ, मतलब क्या कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में जो उद्देश्य बताया है वह प्राप्ति कर, क्या मुक्ति प्राप्त करनी है, पर यहाँ पे बताएगा स सर्ववेद, सर्ववेद व्यक्ति जब हो जाता है तभी ये नहीं सोचता है कि मैं भगवान हूँ। भजति माम, भजति माम, मेरा भजन करता है, किस तरह से भजन करता है? सर्वभावेना, पूरे हृदय के साथ, सब भावनाओं के साथ, ऐसे नहीं सोच के कि हाँ अभी जो मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ उसके परे और कुछ है, उसमें जाना है मुझे, और जो इस तरह सोचता है वह सर्वभाव से भक्ति नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे भक्ति ही, अगर इस श्लोक में देखेंगे तो ये एक श्लोक है जिसमें भक्ति परम साध्य और भक्ति परम साधन और भगवान परम साध्य बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। सर्वविद मतलब क्या है ना, अगर परम साध्य पूर्व वेदों का निष्कर्ष निकालना है तो क्या है? मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम, मुझे पुरुषोत्तम के रूप में समझो, यह सर्वविद हो गया भक्ति। और फिर उसके बाद में क्या करना है उसको, अजित इमाम सर्वभावेन। और यही वास्तव में भगवान ने इसके पहले ही बताया दसवें अध्याय के आठवें श्लोक में, और क्या है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो बुधा सर्वविद बुधा एक ही चीज है क्या, जो व्यक्ति ज्ञानवान हो गया, वास्तव में जो बुधा है ये व्यक्ति जो बुद्ध उस व्यक्ति से संबंधित है। बुद्ध का ये बुद्ध कोई जरूरी नहीं है कि बुद्ध धर्म से ही शब्द संबंधित है, बुधा ये बुद्धि से संबंधित है। सो बुधा बुद्धा वो समय, और बुधा का भगवत में विरुद्ध जो बताया गया है मूढ़ा, बुधा और मूढ़ा। तो भगवान बताते हैं कि जो मुझे नहीं समझता है वो मूढ़ा है। कहाँ बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति जो है वो मूढ़ा है, और जो मुझे समझते हैं वो क्या है, बुधा है। और बुधा क्या करते हैं, भाव समन्वितः, वो पूरे भाव से मेरे भक्ति करते हैं। और अभी फिर भी अगर किसी को संदेह हो कि इसके अलावा और कुछ और ऊंचा ज्ञान है, तो अगले श्लोक में आगे स्पष्ट होता है, इति गुह्यतमं शास्त्रम्,
इति गुह्यतमं शास्त्रम्,
इदमुक्तं मया नघ,
इदमुक्तं मया नघ,
हेतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्
स्यात्, हेतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्,
कृतकृत्यश्च भारत,
कृतकृत्यश्च भारत,
इति गुह्यतमं शास्त्रम्, कि ये सारे शास्त्रों के ज्ञान में गुह्यतम है, इससे और कोई ऊंचा ज्ञान नहीं है, गुह्यतमं शास्त्रम्। और फिर इदम उक्तम मया नघ, हे अनघ, हे अर्जुन तुम पाप से मुक्त हो, इदम उक्तम मैंने तुमसे बताया गया है, सारे शास्त्रों का निचोड़ जो बताया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया। और एतद् बुद्ध्वा, अगर कोई इसको समझ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान स्याद, वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। और ये बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च मतलब जो उसने कृति की है उसमें उसको कृत्यश्च, उसको यश मिल जाएगा, मतलब यशस्वी हो जाएगा। जो परम यश है कि हमको भगवत भक्ति भगवत प्राप्ति करनी है, वह इसमें यशस्वी हो जाएगा। तो अभी इस तरह से ये पुरुषोत्तम वो सर्वश्रेष्ठ सत्य है, और वो सर्वश्रेष्ठ सत्य भगवान स्वयं है, यह इस अध्याय में भगवान स्पष्ट करते हैं। इसलिए अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अभी हम जो पिछले अध्याय हम देखा 13-22 में क्या था, बीज भूंगते उससे है, तो उसके जो वृक्ष, उसके वृक्ष के लिए पानी है वो गुण है, वो चौथे अध्याय में बताया था। ये वृक्ष के स्वभाव क्या है वो 15वें अध्याय में बताया, अभी 16वें अध्याय में वृक्ष का ऊपर का और नीचे का भाग जो है बताया गया, दैवी और आसुर संपत्ति। यस
जी, ये अपने जो बताया ना ब्राह्मण परमात्मा और भगवान 16, 17 और 18, तो ये जो 19 श्लोक है, जाना से पुरुषोत्तम, तो जो भगवान को ही जानता है इसलिए पुरुषोत्तम शब्द इस्तेमाल किया गया है।
हाँ बराबर है, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम हूँ। कैसे है यहाँ पे कहना चाहिए कि कई शब्द जो है, जैसे कृष्ण बोलेंगे तो स्पष्ट है कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, या घनश्याम बोलेंगे या यशोदानंदन बोलेंगे तो स्पष्ट है, पर कुछ शब्द है पुरुषोत्तम या परमात्मा या सृष्टिकर्ता, ऐसे जो शब्द है दे आर नॉन स्पेसिफिक डिस्क्राइबर्स, तो दे जनरिक डिस्क्राइबर्स, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहे हैं। तो फिर इसीलिए बेसिकली अगर तो वो व्यक्ति कौन है वह स्पष्ट करना है, तो मतलब व्हाट इज, कौन सर्वविद है जो समझता है पुरुषोत्तम इज कृष्णा, पुरुषोत्तम इज इक्वल टू कृष्णा। तो पुरुषोत्तम का पद हमें पता है वैदिक शास्त्रों से, कौन है पुरुषोत्तम, नहीं मतलब पुरुषोत्तम क्या है और कितने महान पद है, सर्वश्रेष्ठ है वो, तो वो कौन है पुरुषोत्तम वो जो जानता है वो सर्वविद है। तो अभी 16वें अध्याय में हम शुरुआत करते हैं, श्री भगवान वाच,
श्री भगवान वाच,
अभयम् सत्व संशुद्धे,
अभयम् सत्व संशुद्धे,
ज्ञान योग व्यवस्थिति,
ज्ञान योग व्यवस्थिति,
दानं नमश्च यज्ञश्च,
दानं नमश्च यज्ञश्च,
स्वाध्यायस्तपार्जवम्,
स्वाध्यायस्तपार्जवम्।
ओ अभयम सत्य संस्कृति आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद जी भी स्पष्ट करते हैं कि इन सब चार श्लोकों में चारों वर्णों के गुणों का वर्णन है। तो ये दैव ऐसे नहीं है कि शूद्र असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, ब्राह्मण दैवी प्रवृत्ति के होते हैं, नहीं, शूद्र भी दैवी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो वास्तव में ये अंतरंग गुण है व्यक्ति के। तो इसलिए यहाँ पे जो गुण बताए जा रहे हैं वह सभी वर्णों के और सभी आश्रमों के होते हैं। वर्ण बताए जाते पहले अलग अलग वर्णों के गुण बताते हैं। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसमें जो बताया अभयम असत संशुद्धि, ये प्रभुपाद जी बोलते सन्यासी का गुण है विशेषता विशेष करके, और ज्ञान योग व्यवस्थित। तो ऐसे नहीं है कि जब गुण ऐसे नहीं कि जो अगर कोई ब्रह्मचारी तो वह भयभीत होना चाहिए, नहीं, सबको निर्भयता होनी चाहिए, पर सबको निर्भयता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, पर इन विशेष वर्णों में वह गुण प्रधान है होने चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, अच्छी तरह से ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। तो ये सब जो गुण है इसका विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने पढ़न किया, हमारे पास समय भी कम है। तो फिर यह जो इसमें से कुछ गुण वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये वानप्रस्थ के ज्ञान योग अभयम सत्व ज्ञान योग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर व्यक्ति को पूरा भौतिक बंधन का भौतिक अस्तित्व का स्वभाव पता नहीं है तो उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, पर अगर संन्यास लेना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान का प्रॉपर अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु को सारंग भट्टाचार्य ने बताया कि आप सन्यासी हो, आप वेदांत का अध्ययन करो, वह गलत नहीं है, वह सत्य है। पर वैष्णव जो भक्त होते हैं वो अध्ययन करते शास्त्र का, पर वो वेदांत का अध्ययन नहीं करेंगे, वो भागवतम का अध्ययन करेंगे, वो इसके स्वाभाविक भाष्य है उसका। दानम धमश्च यज्ञश्च, जो दान विशेष करके ये गृहस्थों का भाव है, गृहस्थों का कर्तव्य है, उनमें ये गुण होना चाहिए। तो अभी क्या है, चैरिटी इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, इट इज अ मेंटालिटी। क्या है, दान देना ये केवल एक कार्य नहीं है, ये एक आदत है या एक स्वभाव है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी कुछ दान नहीं दे सकता मैं, पर चलो मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला 50% दो, मैं 70% दूंगा तुम्हें मेरे आमदनी का। पर क्या होता है, वो समय कभी आता ही नहीं है। जब सोचते हैं कि मैं करूंगा तो तब तक बंधन बढ़ाते जाता हूँ और आसक्ति भी बढ़ती जाती है। तो हम कितना दे रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, हम दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो दानम धमश्च यज्ञश्च, ऐसे ऐसे अलग अलग गुणों के बारे में बताते हैं भगवान। स्वाध्याय तपार्जवम, स्वाध्याय विशेष करके ब्रह्मचारियों के लिए होता है। तो फिर उसके बाद में अहिंसा सत्यम क्रोधस, त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेश्वरो लुप्त्वम, मार्दवम रीरचापनम। अहिंसा जो है यह क्षत्रियों का गुण है विशेष करके, हम देखेंगे यही भाव आएगा बाद में। यहाँ पे अहिंसा बताते हैं भगवान, पर क्षत्रियों का जो गुण बताते हैं वहां पे 18वें अध्याय में बताएंगे। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में दौड़ना नहीं चाहिए, युद्ध में युद्ध करते रहना चाहिए। तो अर्जुन बोल सकते हैं अरे दैवी गुण अहिंसा है तो मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर क्या है दैवी गुणों का भी जो होता है अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज से कहती है कि हे राजा, जब जंगल में होते हैं देयर इज अ टाइम टू पनिश एंड देयर इज अ टाइम टू फॉरगिव, एंड द किंग हु डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम्स डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ एंड डिस्ट्रॉयज हिज सिटीजंस। क्या है कि एक कुछ समय है माफ करने के लिए, कुछ समय सजा देने के लिए। तो जो उचित भेद लेके, और प्रधान रूप से भेद क्या है, वो परिस्थिति होती है, बहुत कुछ कब करना है वो उसमें हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। पर क्या होता है, कभी कभी सजा देना भी आवश्यक होता है। सो अहिंसा पर ब्राह्मणों के साधारणतः अहिंसा बताई गई है। तो परशुराम जी जैसे ब्राह्मण सकते हैं वो विशेष रूप से अहिंसा करते, तो वो बहुत अहिंसा वो क्षत्रिय से शस्त्र उठाते हैं वह बहुत असाधारण है। साधारण ब्राह्मण अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति अपैशुनम, अपैशुनम मीन महत्वपूर्ण है कि दूसरों में दोष नहीं देखना। तो अगर हमें दोष देखने की बहुत ही आदत है तो हम जरूर दोष देख सकते हैं। किसका पता है? दोष देखने की प्रवृत्ति का। इफ यू आर ईगर टू फाइंड फॉल्ट्स विद द फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी, तो क्या कर सकते हैं हम कि इससे क्या स्वभाव होता है, क्या परिणाम होता है? कभी कभी हमें लगता है कि मैं दूसरों का दोष देख रहा हूं, उससे मैं उनका भला ही चाहता हूं। अभी कई बार हम भला नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? उनका दोष देख के इतना खुद का उसका बहुत बड़ा अहंकार है, दूसरों में इसको बहुत आदर लेते, उसका आदर देना चाहते हैं, कम करने के लिए उसके हम दोष देते हैं। और पर फिर कभी कभी इच्छा भी अच्छी होगी कि व्यक्ति और अच्छा बने, उसके लिए भी दोष देखते हैं। तो उससे भी वास्तव में व्यक्ति को मत होगी कि नहीं पता नहीं है। मतलब क्या होता है, अभी ये अमेरिका विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक बार एक सर्वे किया गया था कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां वो आर्ट्स कॉलेज में थे, तब उन्होंने वो सब लेखक बनना चाहते थे। तो वो लड़कों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और बोला कि हम अभी वो 1500-1520 लोग थे, उन्होंने जब लिखना चालू किया बोले कि हम जो भी लिखेंगे तो उसमें हम एक दूसरे के लेखों में क्या दोष दिखाएंगे और फिर उससे क्या होगा, हम सब दोष पकड़ जाएंगे तो हम उसको ठीक कर सकते हैं और इम्प्रूव करेंगे उसको। तो फिर तो क्या होता है, ऐसे हमेशा कॉलेज में भी लड़कों लड़कियों में स्पर्धा होती, तो लड़कियों ने वैसे ग्रुप बनाया, उन्होंने कहा कि लड़के एक दूसरे को दोष देख रहे हैं तो हम बिल्कुल उनका उल्टा करेंगे, क्योंकि हम जो भी लिख रहे हैं दूसरों के जो लिखना है उसका जो अच्छा गुण है वो देखेंगे। तो फिर जो सर्वे कर रहे थे उन्होंने ऐसे, तो 15 साल के बाद देखा उन्होंने, तो ये जो ग्रुप था अभी दोनों वो आर्ट्स कॉलेज में गए थे, वो सब लेखक बनने की इच्छा से ही गए थे। तो जो 25 लड़कों का ग्रुप था उसमें से एक भी लड़का प्रोफेशनल राइटर नहीं बना था 15-20 साल के बाद, और बाकी से 4-5 जो थे अच्छे राइटर्स थे और बाकी जो थे वो बिल्कुल ही बिलो एवरेज थे, बहुत ही कम दर्जे के लेखक थे। इसके विपरीत जो लड़कियां थी उसमें से 6 लड़कियां जो थी वो फेमस राइटर बन गई थी, बाकी जो थे वो भी अबाव एवरेज थे और 1-2 थे वो एवरेज थे। तो मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी का दोष देखते हैं, दोष दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्वाभाविकता से भले ही हमारी इच्छा है कि वो व्यक्ति इम्प्रूव करे, पर जब दोष निकालते हैं तो वो क्या होता है, कई बार वो व्यक्ति डिस्करेज हो जाता है, वो व्यक्ति हौसला खो बैठता है। जब हौसला खो बैठता है तो वो व्यक्ति फिर वो प्रयास ही करना छोड़ देता है। जैसे कंपनीज में बताते हैं अपर जो व्यक्ति है वह कई बार पैसे के लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा, अ पर्सन विल नॉट गिव हिमसेल्फ फॉर मनी बट अ पर्सन विल गिव मोर देन हिमसेल्फ फॉर अ मेडल। तो जो मेडल होता है ना कि आपको ये मिल जाएगी, आप बेस्ट एम्प्लॉय हो, आप ये हो ये हो, तो क्या होता है कि व्यक्ति को अगर कुछ प्रोत्साहन मिलता है, हम कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एक है कि सबको कुछ ना कुछ, इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम कहते हैं, थोड़ा सा आत्मविश्वास तो होना चाहिए कि अगर मुझे थोड़ा आत्मविश्वास नहीं है तो मैं भगवान में भी विश्वास कैसे कर सकता हूँ, भक्तों में विश्वास कैसे करता हूँ, क्योंकि अंत में विश्वास तो मैं ही कर रहा हूँ। अगर मैं भक्तों की बात सुन रहा हूँ, सुनने का फैसला कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो आत्मविश्वास होना जरूरी है। वह अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। क्या है कि द ईगो इज लाइक अ लीकिंग बलून विच हैज टू बी कॉन्स्टेंटली फिल्ड बाय द एनकरेजमेंट ऑफ अदर्स, कि हमारा जो अहंकार है, अभी अहंकार क्या है, नकारात्मक उसे होने दे रहा हूं, कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम भी है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो क्या है, एक ऐसा फुगा है जिसमें से हवा हमेशा निकलते रहती। क्या है कि हमारे जब ये गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है, हमसे ये गलती हो जाती है, ये समस्या आ जाती है, तो हमेशा हमारा जो शायद अहंकार शब्द इस्तेमाल करिएगा, हम क्या बोले, हमारा जो उत्साह है, बोल सकते हैं कि एक्चुअली उत्साह जो है वो भी कुछ आत्मविश्वास के आधार पर ही उत्साह हो सकता है। तो हमारा उत्साह क्या है, वह एक फुगे के समान है, उसमें से हवा हमेशा निकलते जा रही है, तो वो हवा किसी न किसी जगह से हमको भरनी पड़ती है। तो वो एक तरह से हम शास्त्रों के अध्ययन से भर सकते हैं, हम दूसरे भक्तों की प्रेरणा से भर सकते हैं, पर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बाकी सबके एनकरेजमेंट, उनके प्रोत्साहन से भरा जाता है। तो अपैशनाम, भगवान बोलते हैं कि जो दूसरों में दोष नहीं देखना, यह बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। मार्दवम मरीर अचापलम, और स्थिर रहना, भगवान चंचल जो है मन का लक्षण है, पर अचापलम स्थिर रहना। तेज क्षमा धृति दक्षौतेज क्षमा धृत शौचम, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता,
अद्रोहो नाति मानिता
भवन्ति संपदं दैवीं,
भवन्ति संपदं दैवीं
अभिजातस्य भारत,
अभिजातस्य भारत।
तो जो अद्रोहो, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये इसका शूद्रों का गुण है, ना अतिमानिता। तो क्या होता है कि शूद्र देखते हैं कि दूसरे वर्णों को हमसे ज्यादा आदर मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी आदर चाहिए। तो ना अतिमानिता, जितना हमारा स्तर है उसके अनुसार हम आदर संतुष्ट रहना चाहिए। ना अतिमानिता, तो अतिमानिता बोला इसका मतलब क्या है कि जो स्वाभाविक मान है कि थोड़ा बहुत मान आवश्यक है। ऐसे नहीं कि अगर मान लीजिए हम कोई प्रवचन पर जा रहे हैं और वहां पे अगर कोई व्यक्ति हमको प्रवचन के बुलाते हैं उनके घर में, आप आओ कुछ सत्संग करो, और जब हम सत्संग कर रहे हो सामने बैठे हैं और मोबाइल में SMS कर रहे कुछ, तो क्या होगा? और सब लोग 10 लोग आए प्रवचन को, 10 अपना मोबाइल में काम कर रहे, तो फिर क्या होगा? तो हम कोई मुक्ति बोलेगा, मैं एक बार होगा कि क्या है, ऐसे लोग प्रवचन दे के मैं नम्रता सीख रहा हूँ। तो ऐसे नम्रता सीखने का कोई फायदा नहीं है, हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि देखो नम्रता महत्वपूर्ण गुण है, पर नम्रता भी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि मैं, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के प्रचार करना है, भगवान का संदेश फैलाना है। एक मित्र है मेरे भक्त, वो ईश्वर कृष्ण पुराण के, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे इसराइल में, और क्या है कि वो जब इसराइल में वहां बुक डिस्ट्रीब्यूटर कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते कीर्तन करते थे और किताब रखते थे, कोई लोग किताब लेते थे, तो वो जब कीर्तन कर रहे थे, तो एक दिन में तो वहां पर क्या प्रदेश में काले संस्कृति नहीं होते साधुओं की वगैरह, कि एक दिन में 12 लोगों ने उनको थूका एक ही दिन में। तो फिर वो
कीर्तन कर रहे थे,
तो फिर तभी वो जब आ रहे थे तो सोच रहे थे कि आज बहुत शुद्धिकरण हो गया। तो सोच रहे थे इस तरह से, फिर बाद में सोचने लग गए कि मेरा शुद्धिकरण हो गया है, पर मैं जब जा रहा हूँ प्रचार के लिए तो सिर्फ मेरे शुद्धिकरण नहीं आ रहा, मुझे संदेश भी फैलाना है, तो मुझे इस तरह से प्रचार करना चाहिए जिससे कि लोग गंभीरता से जो मैं संदेश बोलना बोले। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह से पुरुषण करना अच्छा है, पर कोई और संदेश भी देना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो पहले अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, वापस वो यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने फिर भगवदगीता में PhD किया, और अभी भगवदगीता में दुनिया में स्कॉलर से उसमें से प्रोमिनेंट एक स्कॉलर बन गए। तो अभी जिस यूनिवर्सिटी के बाहर वो बैठते थे और वो रास्ते फुटपाथ पे बैठे बुक स्टूडेंट करते थे, अभी उस यूनिवर्सिटी के अंदर उनका ऑफिस है, वहां पर लेक्चर दे और वही भगवदगीता का संदेश दे रहे। तो क्या है कि हमें ऐसे नहीं है कि हमारे लिए हमें मान चाहिए, पर हमें ये भी ऐसे नहीं है कि हमें ढूंढना है कहां मेरा अपमान होगा, हमें क्या देखना है कहां मैं सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोला कर सकते थे कि भारत में लोग नहीं सुन रहे हैं मेरा संदेश, हाँ मैं प्रवचन दे रहा है कोई नहीं ले रहा, इससे मैं नम्रता सीख रहा हूँ। प्रभुपाद जी से नहीं, कहां संदेश फैलाया जा सकता है। तो ये क्या है, नम्रता की बात नहीं, नम्रता या गर्व की बात नहीं है, ये यथामा प्रपद्यन्ते की बात है। जैसे भगवान भी करते हैं कि जितना लोग समर्पण दिखाते हैं उतना हम उनको समय देते हैं, उतना हम भगवान का ज्ञान देते हैं। तो इसलिए न अतिमानिता, मतलब जितना उपयोग है उतना उपयुक्त है उतना मान होना चाहिए, पर अतिमानिता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राधानाथ महाराज बोलते हैं वचन में कि व्यक्ति क्या सोचता है कि काउंसिल बन जाता है तो सोचता है कि अभी मेरे भी व्यास पूजा होनी चाहिए, मेरे भी लोटस फीट है अभी
मेरे चरण कमल है। तो ये क्या है, ये मिथ्या अहंकार का भाव है, न अतिमानिता। तो हमें
थोड़ा बहुत आदर तो होता है और जो हम भक्त के रूप में सेवा करें थोड़ा बहुत आदर मिलता है, पर ना अतिमानिता। और यह सब जो है यह भगवान बोलते हैं कि दैवी संपद है, दैवी गुण है। अभी अभिजातस्य मतलब क्या है कि ये जन्म से ही आते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, पर जन्म से गुण आते हैं उसका मतलब है कि ऐसे प्रवृत्तियां ऐसे ऐसे वर्णों में होती है, और अगर ऐसे प्रवृत्तियां है तो व्यक्ति ऐसे गुण है तो वो दैवी प्रवृत्ति का है, और पाद बताएगा ऐसी प्रवृत्ति नहीं है तो फिर वो असुरी प्रवृत्ति का है। तो हमारे ये गुण कैसे आते हैं, पिछले जन्म से आते हैं, पिछले जन्म से स्वभाव प्राप्त होता है और फिर उससे हमें अलग अलग प्रकार के गुण आते हैं। जब पांडवों ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया था तो फिर उन्होंने अपनी पहचान बताई दी थी कि मैं कौन, हम कौन है। तो द्रौपदी महाराज ने पूछा तो थोड़ा तो जवाब नहीं दिया स्पष्ट रूप से, तो तभी दृष्टिदुम को द्रुपद ने भेजा कि आप जाके देखो। और फिर दृष्टिदुम ने देखा कि वहां पे वो थोड़ा बाहर से जासूस के रूप में थोड़ा सुन लिया था, कुछ हो गया ये पांडव ही है। फिर बाद में उनको उन्होंने अपने उन्हें बोला कि आप राजमहल में जा जाओ कि अभी ये विवाह का स्वयंवर में आप विजयी हो गए हो, तो अभी उसके उसके मौके पर हमने बड़ी मेजबानी रखी है, तो कृपया आप आ जाओ। तो जब आए तो उन्होंने क्या किया, जिस कमरे में ग्रहण कर रहे थे उसी कमरे में क्या ऐसे चार टेबल बनाए थे, और एक टेबल में शास्त्र रखे थे, दूसरे टेबल में शस्त्र रखे थे, तीसरे टेबल में कृषि की सामग्री रखा था, और चौथे टेबल पे उन्होंने जो शूद्र अलग अलग प्रकार के औजार इस्तेमाल करते हैं उनके कार्य के लिए वह सामग्री रखा था। तो पांच पांडव ने क्या किया, अपना प्रसाद ग्रहण अपना अन्न ग्रहण किया, और फिर उसके बाद में वो कमरे में देखे पांचों ने पांचों उठ के सीधा गए कहां,
शस्त्रों
की ओर, और फिर ये शस्त्र हमने देखा है, ये शस्त्र ऐसा इसके समान, ये शस्त्र उसके समान है, और पूरे उस बात में लग गए। उससे द्रुपद देखे थे कि ये कोई संदेह, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है। तो अभिजातस्य ये क्या है, स्वभाव से होता है। इसलिए हम देखते हैं कि पहले से प्रथा भी होती थी, छोटे बालक के सामने भागवत हम रखते थे, अलग अलग क्या देख क्या उसके ओर आकर्षण करता है, वो भी अभिजातस्य। तो जन्म से ही कुछ गुण होते हैं, उनका विकास भी कर सकते हैं और उनका हम ह्रास भी कर सकते हैं। अभी इसके बाद में
वो जो भागवत और सब चीज रखते हैं वो उस समय वो संस्कार हुआ करता था, इसलिए वो बच्चा प्रवृत्ति जैसे वो महाप्रभु के इसमें कोई भी आचार्य जैसे सरस्वती ठाकुर में अभी अगर कभी कभी रस करते हैं तो उसको कैसे समझना चाहिए कि वो अगर कुछ और कहीं और चला जाता है तो कुछ और पता
है। देखिए कैसे है, हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई अभी बालक है वो पैसे पैसे होकर चला जाता है तो इसका मतलब वो कोई बुरी चीज नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ भी महत्वपूर्ण है, और एक तरह से देखेंगे तो सारे वर्णों में जो मटीरियल प्रोडक्टिव नहीं, सारे आश्रमों में जो मटीरियल प्रोडक्टिव आश्रम है एक गृहस्थ आश्रम है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भक्त है इसका मतलब है वो ब्राह्मण ही होगा, कोई भक्त हो सकता है, वैश्य प्रवृत्ति का भी भक्त हो सकता है। तो अभी पांडव जब शस्त्र लेते हैं उसका मतलब है वो शास्त्रों को नहीं ले रहे, तो क्या उसमें दूषण है वो नहीं। तो हमें ये मैंने इस मेरे वेबसाइट पे एक बड़ा विस्तारित जवाब दिया इस पे, क्या होता है कि कई बार हमारे संस्थान में देखा है कि जो भक्तों के परिवार बच्चे जन्म होते हैं वो भक्त नहीं बनते हैं। तो इसका कारण क्या है, कई कारण हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स पहले तो ये है कि जो पहली जन पहली पीढ़ी थी तो उनको भक्ति में संस्कृति क्या है पता ही नहीं थी। तो क्या है, ऐसे विदुर नीति में बताया गया है कि एक बालक को अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक परिवार नहीं एक पूरा गांव लगता है। तो क्या होता है कि वो अनेक कारण है, भक्त ज्यादा क्यों नहीं बने, पर एक महत्वपूर्ण कारण है कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों की ओर न देखकर उनपे अपेक्षाओं का बहुत जोर दिया गया। अरे आपके लिए हमने इतना किया है, तुम जब गर्भ में थे तो हमने तुम्हारे लिए चेतन चरितामृत पढ़ा है।
तो इस तरह से
ये माता पिता को कर्तव्य के रूप में कर सकते हैं, पर कर्तव्य के समय कर्मण्येव अधिकारस्ते भव कर्मभिः, ऐसे नहीं कि वो बार बार याद दिलाना है तुम्हारे लिए हमने इतना किया तुम क्या कर रहे हो। तो फिर कई बार क्या होता है कि हमें इस अभी इस, ये सांस्कृतिक जो लक्षण का विधिया है वह एक संस्कृति में लागू होती है। अभी संस्कृति नहीं है तो वह उसी तरह से अमल हो गए नहीं, उसमें ज्यादा हमें जोर देना चाहिए। क्या हमेशा भाव क्या होता है कि व्हाट आई कैन डू नॉट व्हाट आई कैन गेट, मैं क्या कर सकता हूं नहीं मुझे क्या प्राप्त हो सकता है। तो मतलब माता पिता को भी देखना चाहिए कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। राधेश्याम प्रभु ने राधा मार्ग से एक सवाल पूछा था कि कई बार क्या होता है जब हम कोई भक्तों को ट्रेनिंग देते हैं तो भक्त कभी भक्ति छोड़ के चले जाते हैं या चार नियम को तोड़ देते हैं, तो फिर क्या उसका जो कर्म है वह किस किस को लगेगा, जो वहां पे टेंपल प्रेजिडेंट को लगेगा या जो उसने रिकमेंडेशन दिया इनिशिएशन को उसके लगेगा या काउंसलर को लगेगा। तो महाराज ने बताया कि हमें कर्म के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए, हमें कर्म के बारे में विचार किए बिना उस व्यक्ति को भक्ति में पुनः कैसे ला सकते हैं, भक्ति में पुनः उत्साहित कैसे रख सकते हैं, उस पर जोर देना चाहिए। कि कर्म के इसमें जाएंगे हम तो फिर वो हम कहां तक जाएंगे। अगर सब कुछ कर्म की दृष्टि से ही हम देखेंगे तो फिर अगर कोई बालक छोटा बालक बीमार गिर गया तो माता पिता सोचते इसके कर्म से बीमार कर गए, रहने दो इसको नहीं, वो कर्म क्या माता पिता का कर्तव्य देखना है। तो हमें कर्म के बारे हमें देखना चाहिए कि रिकमेंडेशन जब रिकमेंडेशन होता है तभी गंभीर भक्त होना चाहिए ताकि अच्छे स्टैंडर्ड्स हो। पर महत्वपूर्ण क्या है कि हम क्या सुविधा दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्या प्राप्त करना है उस पर ज्यादा मन नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए पर उतना नहीं। तो इसीलिए ऐसे रीति रिवाज हमें उसको एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में देखना चाहिए। गाइडलाइन एंड देयर इज इंस्ट्रक्शन, ये दोनों अलग है। गाइडलाइन मतलब कि हम ये मार्ग ऐसे आप जा सकते हैं या एक एक संदर्भ के रूप में आप रख सकते हैं, पर इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे ही करना चाहिए। तो शास्त्र में ये बताया गया है अधिकांश रूप से वो गाइडलाइंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। इसके लिए तो विशेषकर ऐसे ही है। भागवत महाभारत में सुंदर आता है श्लोक है, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं नहीं सर्वत्र विधीयते, देयर इज नॉट अ रूल फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए नियम नहीं होता है। नहीं सर्वत्र विधीयते कि हमें बहुत सी चीजें खुद की बुद्धि से इस्तेमाल करके देशपाल पात्र के अनुसार कार्य करनी पड़ती है, हम हर एक चीज का कोई नियम बना के नहीं कार्य कर सकते। इसके बाद भगवान असुरी गुण का लक्षण बताएंगे।
यहाँ दैवी का अर्थ क्या है, क्योंकि वर्णाश्रम के जो ये गुण है वर्णाश्रम धर्मार्थ काम मोक्ष के स्तर पे, तो दैवी यहाँ पे पूरा आध्यात्मिक या भक्ति से संबंधित
है। अभी दैवी का अर्थ क्या है तो दो चीजें देखते हैं। अगर हम टेक्निकली जाएंगे इस अध्याय के प्रवाह के अनुसार तो इनमें से भगवान ने भक्ति का उल्लेख नहीं किया है, तो ये जो है ये आध्यात्मिक गुण नहीं है, ये भौतिक दैवी है। कि देवता भी वो भगवान की पूरी आराधना करते हैं पर वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो दैवी गुण जो भी है ऐसे नहीं है कि वो भक्ति के गुण है। साधारणतः ये गुण ऐसे है कि अपने अपने वर्ण के अनुसार जो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो ऊपर कैसे प्रगति कर सकता है, उसको क्या गुण हो जिससे प्रगति कर सकता है, उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी कुछ जगह पे बोलते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य गुण है। तो प्रभुपाद जी की विशेषता क्या है हमेशा, वे जो भी शास्त्रों में वर्णन हो रहा है चर्चा हो रही है उसका अंतिम शास्त्र का उद्देश्य क्या है उसके संबंध के दृष्टि से बोलते हैं। तो इसीलिए अभी ये सब गुण हम अगर जो दिव्य मार्ग पे कार्य कर रहा है जो भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है वो विकसित करता है तो उसमें अगर ये गुण आते हैं तो ये दिव्य गुण हो जाते हैं। In a transcendentalist, these qualities are transcendental. But in and of themselves, they are material. They are divine, but they are not transcendental. समझे फर्क? तो अभी भगवान इसके बाद में जो असुरी प्रवृत्ति के गुण हैं उसके बारे में बताएंगे। तम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च
अज्ञानं
चाभिजातस्य दिखावा करना, दर्प मतलब जो गुण है उसका बहुत प्रदर्शन करना, अभिमान मतलब उसके लिए आदर मानना। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, क्रोध करना बहुत, और पारुष्य, पारुष्य मतलब क्या विशेषता कि क्रोध जो होता है वह जब शारीरिक कार्यों से व्यक्त होता है, आक्रमण से व्यक्त होता है उसको हिंसा होती है, और जब वचनों से व्यक्त होता है उसको पारुष्य कहते हैं। तो अभी इसके विरुद्ध जो था मार्दवम, मार्दवम मतलब जेंटलनेस, वह जो बताया था सौम्य वचन, उसके पारुष्य। कई बार क्या होता है कि लोग एक दूसरे के प्रति टॉन्ट मारते हैं, और उसमें क्या होता है जितना जितना वो दूसरे को अपमानित करने वाला या दूसरे को दर्द देने वाला वो टॉन्ट होगा, उतना व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ। तो क्या है, ये वास्तव में असुरी प्रवृत्ति है, पारुष्यमी वचन। और ऐसे जो गुण है ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं। अभी भगवान बताएंगे, जब अर्जुन ऐसे सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि मैं युद्ध करने वाला हूं, और युद्ध में क्या होता है, चुनौती देते हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं, फिर आक्रमण करते हैं, और कई बार वो क्रोध और पारुष्य भी होता है। तो क्या मेरे गुण आसुरी है? तो भगवान उसका जवाब अगले शब्द को देते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय,
दैवी संपद विमोक्षाय,
निबंधाय सुरी मतः,
निबंधाय सुरी मतः,
मांशुच संपदं दैवीं,
मांशुच संपदं दैवीं,
अभिजातोऽसि पांडव,
अभिजातोऽसि पांडव,
दैवी संपद विमोक्षाय। दैवी संपत्ति है वो क्या करती है, वह बंधन से मुक्त कराती है, और जो आसुरी संपत्ति है बंधन में फंसाती है। निबंधाय आसुरी मतः, तो मांशुच, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी संपत्ति है वो क्या है, दैवी है। क्योंकि क्या है, शास्त्रों के अनुसार युद्ध करना वह क्षत्रिय का धर्म है, और अगर नहीं करेगा तो वह अज्ञान, वह अन्याय हो जाता है, कि वह अन्याय का समर्पण हो जाता है, इस मौनम सम्मति लक्षण। तो इस तरह से तो नहीं, तुम्हें जो गुण है वो दैवी है, और उसके द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। तो अभी कुछ लोगों में दैवी गुण जन्म से हो सकते हैं, पर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारे जो दैवी गुण है उनका और विकास भी होगा, और हम भगवत भक्ति की ओर और भगवत धाम की ओर प्रगति कर सकते हैं। तो अवभूत सर्ग द्वावभूत सर्गौ लोकेस्मिन्,
द्वावभूत सर्गौ लोकेस्मिन्,
दैवासुरैव च,
दैवासुरैव च,
दैवो विस्तरशः प्रोक्ता,
दैवो विस्तरशः प्रोक्ता,
आसुरं पार्थमेषु,
आसुरं पार्थमेषु,
द्वावभूत सर्गौ लोकेस्मिन्। ये उसी समान श्लोक है, यह 15वें अध्याय में 16वां श्लोक था। वहां पे दो प्रकार के पुरुष बताए थे, यहाँ पे दो प्रकार के जीव बताए जा रहे हैं। तो सर्ग लोक इसमें दैव आसुर, दैवी प्रकृति के है और आसुरी प्रकृति के हैं, और उसमें से भगवान बताए दैवो विस्तर प्रोक्ता, विस्तार से बताया गया है। तो विस्तार से कहा, कैसे बताया है, वास्तव में यहीं पे नहीं, ये भगवान ने कई बार गुण बताया, जैसे मैंने पहले बताया था दूसरे अध्याय में 54-72, फिर चौथे अध्याय में भी आता है 20-24, फिर 10वें अध्याय में 4-6, 12वें अध्याय में 12-20, 13वें अध्याय में 8-8 भी, 8-12, ऐसे बहुत बार भगवान ने बताया था, ये वो विस्तर प्रोक्त, और अभी भी 16-1-3 बताया है। तो आसुरम पार्थ में सुनो, इसलिए अभी मैं असुरी प्रवृत्ति के गुणों के बारे में बोलूंगा।
जब भगवान ये सुनो बोलते हैं और कई जगह प्रवक्षामी वक्षामी बोलते हैं, तो सुनो क्योंकि ये बहुत जब भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं तो सुनो बहुत सारे इसमें आते हैं, तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। जैसे आठवें अध्याय में जो उत्तरायण दक्षिण मतलब वक्षामी बोलते हैं, बाद में दूसरे जगह भक्ति में जब भक्ति का कार्य है तभी तत्क्षण बोलते हैं।
मैं समझ रही प्रवक्षामी और सुनो, प्रवक्षामी मतलब मैं बोल रहा हूँ, सुनो मतलब आप सुनिए। तो मैं एक बड़ा ग्रंथ होता है उसको कहते हैं कॉनकॉर्डेंस। कॉनकॉर्डेंस मतलब क्या होता है कि अभी एक किताब में एक वचन कहाँ का आया है, तो अभी सुनो जो होता है वो कौन कौन से श्लोकों में आया है उसका सारा लिस्ट होता है। भगवत गीता में जितने भी शब्द इस्तेमाल किए हैं वो सारे शब्द कहाँ कहाँ आते हैं, ऐसा उसको जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं ना, बाइबल होता है या कुरान होता है या पाश्चात्य संस्कृत में शेक्सपियर के ग्रंथ होते हैं, तो उनका कॉनकॉर्डेंस बनाते हैं। कॉनकॉर्डेंस मतलब एक शब्द कहाँ कहाँ है उसका सबका उल्लेख होता है। तो क्या अगर हमें कुछ विशेष कर से देखना है तो हमें सब जगह पे शुरू कहाँ आता है, सब जगह पे कक्षा में कहाँ पे आता है वो देखना है, और फिर उससे हम तुलना कर सकते हैं। तो दिस इज कॉन्कॉर्डेंस के आधार पे ये एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है अगर करना है तो। इट्स इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली। थैंक यू। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
जनान विदुरासुरः शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्ति निवृत्ति जो है इसके बाद प्रवृत्ति मतलब जो करना है, निवृत्ति मतलब जो नहीं करना है। जनान विदुरासुरः असुर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो जानते नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। न शौचं नापि चाचारो सत्यं जो है जो शौच है शुचि है वो जानते नहीं, चाचार उचित व्यवहार है वो जानते नहीं। न सत्यं तेषु विद्यते असत्य भी उनमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जीवन नहीं जी रहा है तो उसका जो व्यवहार होता है वो उचित नहीं रहता है और उसके कारण वो व्यक्ति फंस जाता है भवबंधन में। तो यह प्रधान लक्षण है कि न प्रवृत्तिं च जानन्ति न विद्यां विदुरासुरः, कि जो उचित कार्य है जो अनुचित कार्य है वह उसके बारे में व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है, उसको कोई पता नहीं होता है या जानबूझ के उसका उल्लंघन किया जाता है। इसलिए यह बड़ा ही समस्या का बात है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए अभी भारत का जो ट्रैफिक है वह पूरे विश्व भर में कुप्रसिद्ध है। क्यों कुप्रसिद्ध है? कोई क्या होता है, कोई नियम का पालन ही नहीं करता है। तो वास्तव में क्या होता है, जितना नियम का पालन नहीं होता है उतना क्या होता है, वह शहर पे वह रास्ते पे प्रवास करना मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है वो? क्योंकि नियम होते हैं, रूल्स ब्रिंग ऑर्डर एंड स्मूथनेस। क्या होता है, जो नियम होते हैं उससे क्या होता है, एक नियम एक ऑर्डर नियम शिष्टबद्धता आती है और फिर उसमें सरलता आती है कुछ कार्य करने में। तो नियम नहीं है तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या होता है आज का अभी हम तो ट्रैफिक में कैसे नियम होने चाहिए यह आसान समझ में आता है, चाहिए नियम नहीं तो क्या कितना बड़ा। और भौतिकवादी भी लोग कहते हैं कि ये नियम का पालन क्यों करना है आपको, पर वो भी स्वीकार करते हैं कि अगर हमको रास्ते पे जाना है तो नियम जरूरी है और अगर कोई नियम पालन नहीं कर रहा है तो उससे कैसे नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, वो सब स्वीकार करते खत्म। तो जैसे हम किसी रास्ते पे जाने के नियम लगते हैं उसी तरह से जीवन में चलने के लिए भी नियम लगते हैं। अगर वो नियम नहीं होंगे तो फिर क्या होता है, पूरे समाज में विध्वंस हो जाता है। तो इसीलिए कृपा जी बोला करते थे कि सारे संस्कृत समाजों में पुरुष और स्त्री के मिलन के लिए क्या होता है, विवाह का आयोजन होता है किसी न किसी पद्धति से। जानवरों के समाज में नहीं होता है, क्योंकि उससे कुछ रेगुलेशन होता है, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री साथ में रहते हैं तो उसके सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है, वह उनके बच्चों पे होता है। कोई माता पिता नहीं रहते उनके, उनको भी असुविधा रहती है, अस्थिरता रहती है। कोई भले कोई कहेगा कि हम कुछ पाप पुण्य ऐसे मानते नहीं है, तो मैंने एक लिख लिखा है मेरे वहां किताबों में, क्या भले आप पाप पुण्य नहीं मानते, इस जीवन इस जगत के हम लक्षणों से भी देखेंगे तो क्या होता है, जो लोग मॉरालिटी नैतिकता के जीवन नहीं जीते हैं तो उनमें इस जीवन के दृष्टि से भी हम देखेंगे जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, सुसाइड है, डाइवोर्स है, एडिक्शंस है, जो भौतिक दृष्टि से भी खराब है वह भी हम देख सकते हैं। मतलब भले ही कोई अगले जन्म में कर्म का फल को विश्वास नहीं करता है, पाप का जो फल है इस जन्म में भी हम देख सकते हैं। इसलिए क्या है, अगर नियम नहीं है तो सब जगह पे जो होता है आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिनाम न विदुरासुरः, और इस प्रकार से वो पालन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो मूल जीवन की विचारधारा है वही गलत है। असत्यम अप्रतिष्ठं ते,
असत्यम अप्रतिष्ठं ते,
जगदाहुरनीश्वरं,
जगदाहुरनीश्वरं,
अपरस्पर संभूतं,
अपरस्पर संभूतं,
किमन्यत् कामहेतुकम्,
किमन्यत् कामहेतुकम्।
तो असत्यम अप्रतिष्ठं ते, जो भौतिक जगत है असत्य है, उसका कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो मायावादी का उल्लेख कर रहा है, बताते हैं बल्द विद्याभूषण क्या करते हैं, जो षट दर्शन है उसमें कई भ्रांत धारणाएं आती हैं। तो कौन सा इसमें से विचारधारा किस भ्रांत धारणा से संबंधित है, उसका वर्णन करते हैं। सत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्। तो जो नास्तिक वाली सांख्य होता है वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, केवल पुरुष और प्रकृति है। तो अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम्, ये केवल काम के हेतु से कार्य चल रहा है इस जगत में, और कोई कोई हेतु ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग। तो काम वासना के कारण सब कुछ चल रहा है। अभी सत्य है भौतिक दृष्टि पर आध्यात्मिक दृष्टि पे सत्य नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि पे जो है निस्वार्थ भाव से कार्य चल रहा है। तो किम अन्यत् काम हेतुकम्, लोग सोचते हैं कि अंत में सब कुछ काम के अलावा कुछ और है ही नहीं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य,
एताम दृष्टिमवष्टभ्य,
नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः,
नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः,
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः,
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः,
क्षयाय जगतो हितः,
क्षयाय जगतो हितः।
एताम दृष्टिमवष्टभ्य, इस प्रकार की दृष्टि जो स्वीकार करता है वह व्यक्ति क्या होता है, नष्टात्मान, उसने आत्मा का नाश कर दिया है। अल्प बुद्धयः, उसकी बुद्धि बहुत अल्प है, बहुत कम है। और प्रभवन्ति उग्र कर्माण, वो प्रभाव उसने जन्म लिया है उग्र कर्माण, बड़े ही भीषण कर्म करने के लिए और अब बहुत ही खतरनाक कर्म करने के लिए। क्षयाय जगतो हितः, और वह जगत का हित और जगत का विनाश करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते किस तरह से अभी एटम बम आ रहे हैं, न्यूक्लियर बम आ रहे हैं, अभी नए प्रकार के बम निकले हैं। क्या जो होता है, एक सेलफोन होता है छोटा सेलफोन, तो वो सेलफोन ही बम के रूप में कार्य करता है। मतलब सेलफोन के अंदर विस्फोटक चीजें रखते हैं, वो जब विस्फोटक चीजें होती है वो क्या करते हैं, विस्फोट भी हो जाएगा तो कोई धूम आवाज नहीं आएगा, विस्फोट होने के बाद होगा सिर्फ एक जहरीला गैस निकलेगा। और वो एक जो सेलफोन के अंदर उसके विस्फोट के द्वारा इतना जहरीला गैस निकल सकता है कि बेलगांव का पूरे शहर के सब लोग वो जहरीले गैस से मर जाएंगे। तो इतना खतरनाक हो गया, अभी कैसे सिर्फ एक सेलफोन से इतना विनाश कर सकते। तो यह जो है अभी तमोगुण के प्रभाव के कारण नए नए विध्वंस के लक्षण निकाल के विधियां निकाली जा रही हैं। जब पहला महायुद्ध खत्म होने आ रहा था तो तभी क्या हुआ, नए नए शस्त्र निकलने लग गए, और जो शस्त्र निकलने लग गए इस तरह से युद्ध करने के लिए, तो तभी कई बार कई ऐसे वैज्ञानिक थे वो बोले कि हम हमारी जो बुद्धि है वैसे दूसरों का विनाश करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो बोले कि हम ऐसे संशोधन में नहीं लगेंगे। पर क्या हुआ, उसके बाद में वह वैज्ञानिक तो नहीं आ गए पर दूसरे वैज्ञानिक आ गए, और दूसरे वैज्ञानिक ऐसा संशोधन करने लग गए। तो जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तभी जो हिटलर ने ऐसे अफवाह फैलाई थी कि हिटलर की जो सैन्य हार रही थी, उसने ऐसे अफवाह फैलाई कि अभी मेरे पास ऐसे शस्त्र है कि वो एक शस्त्र के इस्तेमाल से पूरा यूरोप पूरे शत्रुओं की सेना को मैं हरा दूंगा। तो अभी ये अफवाह है या सत्य किसी को पता ही नहीं था। तो तभी उस समय तक न्यूक्लियर वेपन बने नहीं थे। तो तभी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो पिछले शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, तो उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक खत लिखा कि हिटलर को न्यूक्लियर वेपन बनाने के पहले आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। तो उसने कहा नहीं तो फिर उसके हाथ में आ जाएगा, वो विध्वंस कर देगा, सारे विश्व का नाश हो जाएगा। तो बाद में अगर संशोधन किया तो वास्तव में हिटलर जैसे वैज्ञानिक थे वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता से काफी दूर थे। पर जब अमेरिका ने बना लिया तो तभी क्या हो गया, अमेरिका और जापान जैसे चल रहा था, जापान वैसे भी हारने भी आ गई थी, पर अपनी शक्ति दर्शाने के लिए अमेरिका ने दो बार वो जो अण्वस्त्र है वो हिरोशिमा और नागासाकी पे डाले, और जब वहां पे डाले तो ऐसा विनाश हो गया। अभी तक वहां पे जो है हिरोशिमा नागासाकी जाएगी तो अभी तक वहां पे वो रेडिएशन है, और अभी भी वहां पे जो बच्चे जन्म लेते हैं कभी उनका हाथ की उंगलियां नहीं होती है, उनका चेहरा टेढ़ा होता है, उनके जो फेफड़े खराब होते हैं। अभी वो 60 साल हो गए लगभग उसको, फिर भी वो जो किरणें हैं वो अभी तक है। तो उसके बाद में जब वो जापान ने हार मान लिया तो अमेरिका ने कुछ रिलीफ मेजर्स भेजे उसके अंदर कि राहत के लिए कुछ सहायता भेजी। तो उसमें आइंस्टाइन भी एक व्यक्ति थे, और आइंस्टाइन ने बाद में कहा जो विध्वंस देखा उसने इसे इसकी वो अमेरिका अध्यक्ष को प्रेसिडेंट को बताना कि आप ऐसे शस्त्र बनाओ, उसके लिए आप फंड्स दो, उसके लिए आप ऐसे करो। यह वह जो खत मैंने लिखा वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, कभी लिखना ही नहीं चाहिए मैंने खत। पर फिर बोले परिस्थिति ऐसी थी कि अगर शत्रु के हाथ में आता तो और खराब हो जाता। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इवन इट इज ट्रैजिक दैट द बेस्ट इन्वेंशन और द बेस्ट साइंटिफिक इंसाइट ऑफ द बेस्ट ब्रेन ऑफ द लास्ट सेंचुरी लेड टू द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो आइंस्टाइन जो है पिछले शताब्दी सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते, और उनका जो सबसे बड़ा जो खोज है क्या है कि जो इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, कि जो कि जल पद्धति से प्रकृति से ऊर्जा बनाई जाती है, उसके आधार परमाणु अस्त्र बनाए गए थे। तो ये नष्टा उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हितः। तो अभी किसका दोष है किसका दोष नहीं है वह हम बड़े आसानी से बोल नहीं सकते, पर हम साधारण समझ सकते हैं कि इस तरह से होता है जब अनैतिकता आ जाती है, भगवत ज्ञान दूर जाता है तो क्षयाय जगतो हितः, क्षय होता है पूरा। फिर उसके बाद में काममाश्रित्य दुष्पूरम तो काममाश्रित्य, काम का आश्रय ग्रहण करते, किसका काम है वो दुष्पूरम, जिसको कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, और दंभमान मदान्वितः, और पूरा दंभ और मान से भरा होता है वो। मोहात गृहीत्वा, मोह के कारण व्यक्ति स्वीकार करता है जो असत है सत के रूप में स्वीकार करता है, जिसमें कोई आनंद नहीं है उसमें आनंद समझ लेता है, और फिर प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः, बिल्कुल अशुद्ध व्रत लेते हैं। अशुद्ध व्रत मतलब क्या है कि विश्वास बिल्कुल बताते इसमें कि कैसे जो ब्लैक मैजिक होता है, काला तंत्र, तंत्र में जो व्रत लेते हैं, अशुचि चीजें करने की, गंद चीजें करने के, वो जो व्रत होते हैं उसको उल्लेख कर रहे हैं, अशुचि व्रतः। ये पूना मंदिर में जब वो न्यू टेंपल बन रहा था तभी क्या कि कैसे लोगों को और उसके बारे में जानकारी दी जाए, उसमें एक पूना टेंपल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री हुआ था कि क्या बहुत से विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में, एक कृष्ण की प्रतियोगिता बनाने में सहभागी किया था, तो पूरे विश्व भर में इतना नहीं हुआ था, तभी बहुत फेमस हो गया था। तो उसी समय और भी कोई रिकॉर्ड सेट हुए थे और वह भी न्यूज़पेपर में आ रहे थे। तो अभी एक रिकॉर्ड क्या आया था कि थाईलैंड में कोई पुरुष और स्त्री थे, तो उन्होंने एक दूसरे का 47 घंटा कंटिन्यूस चुंबन किया। अभी वास्तव में भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो क्या है, मुंह से सलाइवा निकल रहा है, थूक निकल रहा है, वो उसमें कोई कोई भोग या आनंद की कल्पना हो सकती है, पर वो कितने समय तक होता है, वो इतने, वो क्या सिर्फ रिकॉर्ड के लिए वो मुंह चिपका के रखने का। वो क्या है, अशुचि व्रत, अशुचि व्रत और कुछ है ही नहीं वो। तो जब व्यक्ति को क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आता है, तो व्यक्ति बिल्कुल पागल जैसा कार्य करते हैं। तो इसके बाद भगवान बताते हैं ये किस तरह से, चिंताम परिमेयाम च प्रलयान्ताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशा पाशतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ
संचया।
चिंताम अपरिमेयाम च, व्यक्ति नृत्य के पीछे लग जाता है तो चिंता जो होती है असीमित होती है, उसका कभी अंत नहीं होता है। प्रलयांता उपाशिता, चिंता मृत्यु तक रहती है, उसका कोई चिंता का कोई अंत नहीं होता है। और तो मतलब क्या है, अनलिमिटेड अनएंडिंग एंजाइटी, जो संख्या में असंख्य अगणनीय है और काल दृष्टि से वो मृत्यु तक रहती है। चिंता प्रलयांता उपाशिता, और क्यों आता है ये, कामोपभोग परमा, क्या प्रभुपाद इसका भाषांतर करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का प्राइम नेसेसिटी है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है वो क्या है, इंद्रिय तृप्ति ही है। तो अभी एक जरूरत है, प्रभुपाद जी बोलते आहार निद्रा भय मैथुन, यह सब योनियों में जो जीव है उनकी जरूरत है, पर वह सबसे महत्वपूर्ण जरूरत नहीं है, वो एक जरूरत है, उसको पूरा करना है। और विशेष करके मानव जीवन में आते हैं तो हमको और भी बहुत करने का मौका है उसको। अगर कभी IIT जो है भारत में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विख्यात यूनिवर्सिटी मानते हैं, अभी सारे भारत भर में अलग अलग विद्यार्थी है, अलग अलग कॉलेजेस में हैं और सब में वो पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ भी विद्यार्थी रहते हैं उनको कुछ रहने के चाहिए, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, उसके लिए मेस होता है, उसके लिए कैंटीन होता है। तो IIT में जाते हैं वहाँ पर भी खाने के लिए व्यवस्था होती है, पर अगर कोई सोचता है कि मैं IIT में जाऊंगा और वहां पे मेरा उद्देश्य क्या है, स्वादिष्ट अन्न कहाँ मिलेगा, और सारा दिन भर वही ढूंढते बैठेगा, तो फिर ये क्या है, ये मूर्खता है। उसे पढ़ना ही ढूंढना था तो IIT जाने की क्या जरूरत थी, वो तो कहीं और से भी प्राप्त कर सकते थे। IIT में जा रहे हैं तो वहां पे और कुछ ऊंचा कर सकते हैं, वहां पे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से आहार निद्रा में मैथुन जो है वह एक जरूरत है, पर वह जरूरत तो सभी योनियों में है और उसको पूरा करना महत्वपूर्ण है, पर सभी योनि पूरा किया जा सकता है उसको। पर अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में लग रहे, हमको मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर में ऊंचा कार्य हम कर सकते हैं, इसीलिए यह कामोपभोग परमा यह गलत है। काम ये एक धर्म अर्थ काम मोक्ष में एक अंग है उसका, पर कामोपभोग परमा इसको ही अगर सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं तो फिर बहुत गलत है। हम देखते हैं कि रामायण में जब युधिष्ठिर, जब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज से मिलने आते हैं, तो दशरथ महाराज से पूछते हैं कि आपका पुनर्जन्म पे विजय कैसे कैसे प्रगति हो रही है। तो क्या है, सन्यासी को अगर सवाल पूछना है, सवाल पूछते हैं कि आपका पुनर्जन्म पे विजय कैसे हो रहा है। महाभारत में हम देखते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज से मिलने नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि से क्या सवाल पूछते हैं, उनसे ये नहीं पूछते कि आप पुनर्जन्म के वैसे लिए कैसे हो रहे हैं, अलग अलग वर्णों के लिए अलग चीज उनके पूछते हैं कि क्या आप धर्म अर्थ और काम में समन्वय रख रहे हो। क्या वह व्यक्ति जो धर्म के लिए अर्थ और काम का त्याग कर दे, या अर्थ के लिए धर्म और काम का त्याग कर दे, या काम के लिए धर्म और अर्थ त्याग कर दे, वह व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में सुखी नहीं रह सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में तीनों का समन्वय रखना चाहिए। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कामोपभोग परमा, उसको ही सबसे पूरा मानते हैं, तो वो गलत है। अनितावदिति निश्चितः, निश्चितः, वो सोचते हैं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है। और फिर ऐसे लोग जो होते आशा पाश शतैर्बद्धः,
आशा पाश शतैर्बद्धः,
काम क्रोध परायणः,
काम क्रोध परायणः,
हमने पढ़ा नहीं है
एक्चुअली,
तो क्या है, आशा जो है भोग करने की इच्छा, वो एक पाश बन जाती है जो भक्ति को बांध देती है, बंधन में फंसा देती है। और शतई सैकड़ों है ऐसे पाश, काम क्रोध परायण, काम क्रोध से बन जाता है, और ईहंते काम भोगार्थम, और काम भोग के लिए क्या होता है, इस तरह से अन्याय, अलग अलग प्रकार का अन्याय व्यक्ति करने लगता है। तो जब काम वासना अनियंत्रित जाती है, तो काम वासना की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विचार नहीं कर सकता, और उसके कारण बहुत कुछ भयंकर कार्य भी कर देता है। साधारणतः हम देखते हैं कि आजकल के समाज में भी ऐसे बताया कि एडिक्शन इज अ वेरी कंसिस्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ क्राइम। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यसन में फंस जाता है, तो अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यसन में आ गया है तो उसके बाद में जरूर गुनाह में आ जाएगा। तो क्या होता है, क्योंकि व्यसन जो होता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। कोई शराब पीना है व्यक्ति को, तो क्या होता है, शराब पी रहा होता है तो जितने प्रामाणिक मात्रा से खर्चा का पैसा खर्च कर, पैसा कमा के खर्च करके इतना शराब ले, उसे संतुष्ट नहीं रहेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो इसे गुनाह में लग जाता है। तो आशा पाश शतैर्बद्धः, इसे बद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो क्या होता है, तो उसके कारण काम भोग की चक्र अन्याय में चलाता है, वो पाप कार्य करने लगता है। तो किस प्रकार के पाप कार्य करता है उसका वर्णन अगले श्लोकों में होगा, वो चर्चा हम कल करेंगे। और धन्यवाद, श्रीमद् भगवद् गीता की जय, प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद की जय।